تفسیر سورة قاف آیت نمبر 16 سے 35 تک اقوال اور افعال کو ریکارڈ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، قیامت کی منظر کشی ہے اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو جو کامیابی ملے گی اس کا ذکر ہے. بڑا ہی زبردست انداز ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. سورة قاف آیت نمبر 16. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اللہ تعالی کی دو صفات کا خاص طور پر ذکر ہے، ایک ہے علیم اور ایک ہے خبیر. یہ آیت پکار رہی ہے، یہ آیت متوجہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کی خلوت اور جلوت، اس کے تمام اقوال اور افعال کو جانتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو. آپ دیکھیں خلقنا میں نون الف نا جو ہے یہ ضمیر ہے جو جمع متکلم کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کو پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، ہم ہیں انسان کے خالق. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم خوب جانتے ہیں. مَا تُوَسْوِسُ، جو وسوسے گزرتے ہیں، جو وسوسے ابھرتے ہیں. بہی، اس کو، نفسہ، اس کے دل میں. یہاں پہ نفس کا لفظ جو ہے وہ دل کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ انسان جو کچھ چھپاتا ہے اور جو کچھ دل میں چھپا کر رکھتا ہے، ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم اس کے خالق ہیں. ہم ہی نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا. وسوسا، اس کے وزن پر آپ دیکھیں زلزلہ، وسوسا، زلزلہ، جو اس وزن پر لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک تکرار پائی جاتی ہے، ان کے معنی کے اندر ایک تکرار پائی جاتی ہے. وسوسا، دل میں گزرنے والے خیالات کو کہا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دل کے اندر ایک خیال آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، ایک امید ہے ایک مایوسی ہے. اتنی تیزی سے خیالات آتے جاتے ہیں اور کوئی دوسرا جو سامنے پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. آپ مسکرا رہے ہیں لیکن دل کے اندر غم ہے، آپ پریشان ہیں لیکن آپ ظاہر نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دل میں گزرنے والے خیالات جو ہیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہوتا. یا تو وہ شخص جس کے دل میں خیالات گزر رہے ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم ہی زیادہ قریب ہیں اس کے. اقربو اسم تفضیل ہے، زیادہ قریب. الیہی، اس کی طرف، یعنی اس کے وسوسوں کی طرف، اس انسان کے عملوں کی طرف. من حبل الورید، حبل کا لفظ جو ہے یہ رسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حبل رسی کو کہتے ہیں. اور ورید، ورید عربی زبان میں ہر جاندار کی وہ رگیں ہیں جن سے خون جو ہے بہہ کر بہتا ہوا تمام بدن میں پہنچتا ہے. ورید جو ہے شاہ رگ یا رگ جان کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے. ये रग हलक के एक किनारे से इंसान के कंधे तक होती है और यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि हम उसकी जो हबलिल वरीद है, शाह रग है या रगे गर्दन है, उससे भी ज़्यादा करीब हैं, तो ये दरअसल अरबी ज़बान का एक बड़ा ही मशहूर मुहावरा है। निहायत दर्जा कुर्बत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि हम हर शख्स की रगे जान से भी ज़्यादा उससे करीब हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, हमारा इल्म, हमारी कुदरत हर शख्स का हर लिहाज से अहाता किया हुआ है, उसका जाहिर, उसका बातिन, उसकी खलवत, उसकी जलवत, उसके अकवाल, उसके अफाल, सारी चीज़ें जो हैं हम जानते हैं। अकवाल और अफाल तो दरकिनार, उसके दिल के अंदर जो वसवसे होते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि हम उनको भी जानते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं खालिक हूँ इंसान का और मैंने उसके जोड़ जोड़ बंद बंद नस नस को बनाया है। तो आखिर इंसान की जो बातें हैं या उसके वसवसे हैं, जो उसके ख्यालात हैं या उसके अमाल हैं, मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। यही बात सूरत अल मुल्क आयत 14 में भी आई है, अला यालमु मन खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया। जैसे बाज़ुकात वालदैन कहते हैं कि हम अपनी औलाद को जानते हैं, हम उसकी रग रग से वाकिफ हैं, हमें उनकी आदतों का पता है। तो आप देखें कि वालदैन जो हैं उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। यहाँ पे खालिक हमसे मुखातिब है और खालिक पुकार पुकार कर कह रहा है कि इंसान, मैं तेरी जो है वो एक एक बात से वाकिफ हूँ, मेरी कुदरत ने, मेरे इल्म ने तुझे अंदर और बाहर से घेर रखा है, तेरी रगे गर्दन भी उतनी करीब नहीं है जितना हमारा इल्म और हमारी कुदरत तुझसे करीब है। हदीस में आता है, बुखारी की रवायत है, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दिल में गुजरने वाले ख्यालात को माफ़ कर दिया है, यानी इन पर गिरफ्त नहीं करेगा जब तक कि वो ज़बान से इनका इजहार ना करे या इन पर अमल ना करे। तो वसवसे जो है ना, जो दिल के अंदर आते हैं जाते हैं, ये तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए हैं। और अब यहाँ पे जो है वो बात है अकवाल की और अफाल की, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस पे उससे मैं वाकिफ हूँ। और मानी क्या है कि जब तुम मेरी निगाहों में हो तो मैं, जब तुम्हारी हरकत और सकनात को जानता हूँ, तो इसका ये मतलब है कि इंसान एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि तू अल्लाह की अदालत में पेश होगा और फिर तेरे जो अफ़ाल हैं, आमाल हैं, उनके बारे में तुझसे पूछा जाएगा। तो आयत नंबर 16 में तो अल्लाह ताला अपना हवाला दे रहे हैं, आयत नंबर 17 और 18 में अल्लाह ताला ने जो आमाल नामे को महफूज करने का, अकवाल और अफ़ाल को रिकॉर्ड करने का जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंतज़ाम किया है, उससे मुतनब्बे कर रहे हैं। इज़ यतलक्कल मुतलक्की यानी अनिल यमीनी व अनिल शिमाली क़ईद। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, और हमारे इस बराह रास्त इल्म के अलावा दो कातिब इसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज़ को नोट कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो यतलक्कल मुतलक्कियान, इसके क्या मानी हैं? वैसे जो है वो आपने पीछे पढ़ा था ना कि फतलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमात, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से वो कलमात सीख लिए थे जिससे माफ़ी उन्होंने फिर मांगी, क्योंकि उनसे गलती हो गई थी ना। तो फतलक्का जो है, वैसे लाम काफ़ वाओ लाम काफ़ या मिलना, मुलाकात करना, इसी से ये लफ्ज़ अखज़ करना, हासिल करना के मानी भी देता है। और तलक्का जो है इसके मानी क्या है? अखज़ करना और हासिल कर लेना, ले लेना। इज यतलक्का के जब ले लेते हैं, अल मुतलक्की यानी ये तस्निये का सीगा है, दो लिखने वाले, दो अखज़ कर लेने वाले, दो ले लेने वाले। जब इंसान कोई काम करता है या कोई बात करता है तो दो ले लेने वाले, दो लिख लेने वाले जो हैं वो उसको ले लेते हैं, और मुराद हैं फरिश्ते फरिश्ते मुराद हैं किरामन कातिबीन, जो कि इंसान के दाएं और बाएं जो हैं बैठे हैं। दाएं हाथ का फरिश्ता नेक आमाल और अकवाल का रिकॉर्ड रखता है और बाईं तरफ का बुरे आमाल और अकवाल का रिकॉर्ड रखता है। तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते जो है वो हमारे लिए मुकरर किए हैं, जो इंसान के आमाल को लिखने में मसरूफ रहते हैं। अनिल यमीनी से दाएं, तो दाईं तरफ का फरिश्ता। व अनि शिमाली से बाएं, बाईं तरफ का फरिश्ता। कईद, कईद जो है कादा से ही है, निगरानी करने वाला, मुराद है जमकर बैठने वाला, यानी वो फरिश्ते जो हैं वो अपनी ड्यूटी पर जमकर बैठे हैं। कईद, कईद जो है इसके मानी है कि फरिश्ते जो हैं अपना फर्ज सर अंजाम देने के लिए जो है वो एक्टिव हैं, तैयार हैं। अब आप देखें कि जब कोई जो है वो एक्टिव हो, तैयार हो, तो वो क्या करता है कि वो जो उसका फ़र्ज़ होता है उसको फौरी फौरी अदा करता चला जाता है। इंसान जो है चल रहा है, बैठा हुआ है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बातें कर रहा है, अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, नेकियां कर रहा है, गुनाह कर रहा है, जो कुछ भी इंसान करता जाता है तो ये किरामन कातिबीन जो है उसको नोट करते जाते हैं। अहनफ बिन कैस की रिवायत से लिखा है कि इन दो फरिश्तों में से साहिब यमीन नेक अमाल को लिखता है और वो साहिब शिमाल यानी दूसरा फरिश्ता बाएं जानिब के फरिश्ते को जो है वो, बाएं जानिब का फरिश्ता जो है वो बुरे अमाल को लिखता है। अगर इंसान कोई गुनाह करता है तो वो दाएं हाथ के फरिश्ते से यानी दाएं हाथ का फरिश्ता जो है वो बाएं हाथ के फरिश्ते से कहता है कि अभी इसको अपने सहीफे में ना लिखो, इसको मोहलत दो, अगर तौबा कर ली तो रहने देना, वरना फिर अमाल नामे में दर्ज कर लेना। इसी तरह जो है वो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तिलावत करके फरमाया, ए इब्ने आदम, तेरे लिए नामा अमाल बिछा दिया गया है और तुझ पर दो मुअज्जज़ फरिश्ते मुकरर कर दिए गए हैं, एक तेरी दाईं जानिब और दूसरा तेरी बाईं जानिब। दाईं जाने वाला तेरी नेकियों को लिखता है, हसनात को, और बाईं जाने वाला तेरी सैयात और गुनाहों को। अब इस हकीकत को सामने रख कर जो तेरा जी चाहे अमल कर, और कम कर या ज़्यादा, यहाँ तक कि जब तू मरेगा तो ये सहीफ़ा नाम अमाल लपेट दिया जाएगा और तेरी गर्दन में डाल दिया जाएगा, जो तेरे सामने तेरे साथ कब्र में जाएगा और रहेगा यहाँ तक कि जब तू क़्यामत के दिन कब्र से निकलेगा। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे, आप ये सूरत बनी इसराइल में पढ़ चुकी हैं, वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु तायरहू फ़ी उनुके व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामती किताबें यलकाहु मनशूरा इकरा किताब का कफ़ा बिनफ़सिकल यौमा अलैका हसीबा। हमने हर इंसान का नामा अमाल उसकी गर्दन में लटका दिया है और क़्यामत के दिन इंसान उसको खुला हुआ पाएगा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसे कहा जाएगा कि अब अपना नामा अमाल खुद पढ़ ले, तो खुद ही अपना हिसाब लगाने के लिए काफ़ी है। और ये है सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 13 और 14। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा की कसम इस ज़ात ने बड़ा अदल व इंसाफ किया जिसने खुद तुझको ही तेरे अमाल का मुहासिब बना दिया। तो आप देख ले कि हर इंसान के अमाल उसके गले का हार बन जाएंगे और इंसान खुद जो है उसे कहा जाएगा कि देख ये है तेरा किया हुआ, यह है तेरी बातें, यह है तेरे अमाल, अब तू अपने अमलों का खुद जिम्मेदार है। आयत नंबर 18, मा यल्फिजु मिन कौलिन, नहीं कोई लफ्ज़ इसकी ज़बान से निकलता। यहाँ पे यल्फिजु जो है ये अहम है, इसका रूट है लाम फा ज़्वा, इसके लफ्जी मानी है फेंकना। मुंह से फेंकी हुई चीज को भी जो है लुफाजी कहते हैं, या दस्तरखान से झाड़ी हुई चीज को। इसी तरह लाफिज, चक्की आटा बाहर जो फेंकती जाती है उसको भी लाफिज कहते हैं, क्योंकि चक्की जो है बाहर आटा फेंकती जाती है ना। तो इसी तरह लफ्ज के फिर मानी क्या है कि वो अल्फाज जो इंसान जबान से अपनी मुंह से बाहर निकालता जाता है। मा यल्फिजू, नहीं वो निकालता मिन कौलिन अपनी जबान से या अपनी गुफ्तगू से, इल्ला लदेही, मगर लदेही उसके पास, रकीबुन निगहबान, अतीत तैयार। ऐन ता दाल इसका मादा है और इसके मानी है पहले से तैयार चीज, अतीत हाजिर और पहले से तैयार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये फरिश्ते इसका एक एक लफ्ज़ लिखते हैं, खा इसमें कोई गुनाह या सवाब हो या ना हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, सिर्फ वो कलमात लिखते जाते हैं जिन पर कोई सवाब या गुनाह हो। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बिलाल बिन हारिस से रवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बाज़ औक़ात कोई कलमा खैर निकालता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है, मगर उसको ये मामूली बात समझकर बोलता है, उसको पता भी नहीं होता कि इसका सवाब कहाँ तक पहुँचा, कि अल्लाह ताला इसके लिए अपनी हमेशा की रज़ा क़यामत तक लिख देते हैं। इसी तरह इंसान कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला कलमा मामूली समझकर ज़बान से निकालता है, उसको गुमान भी नहीं होता कि इसका गुनाह कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसकी वजह से इस शख्स से अपनी हमेशा की नाराज़गी क़यामत तक के लिए लिख देते हैं। हज़रत अलकमा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बिलाल बिन हारिस की ये हदीस नकल करने के बाद कहते हैं, इस हदीस ने मुझे बहुत सी बातें ज़बान से निकालने से रोक दिया है। और अब आप देखें कि आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल कैसी करती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, कि ज़बान की लग्जिश कदमों की लग्जिश से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ज़बान वो दरिंदा है कि आप छोड़ दो तो वो काट खाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन जो है वो मस्जिद नबी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जो थे वो अपनी ज़बान को खींच रहे थे, रो रहे थे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहा कि ये ज़बान ही तो होगी जो क़यामत के दिन जो है हमें हलाकतों के बल जो है वो डालेगी, यानी वो क़यामत के दिन जहन्नुम में डालेगी। और आप देख लें कि ज़ख़म भर जाते हैं लेकिन जो ज़बान के लगाए हुए ज़ख़म होते हैं ना वो मुद्दतों गुजर जाती हैं, भरते नहीं। अल्फाज याद आते हैं, फ़लाने फ़लाँ वक्त पर ऐसा कहा था। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अक्लमंद की ज़बान दिल के पीछे है, जब वो कुछ कहना चाहता है तो दिल की तरफ रुजू करता है कि अगर वो बात उसके फ़ायदे की हो तो कहता है, वरना रुक जाता है, और जाहिल का दिल इसकी ज़बान की नोक पर होता है, वो कलब की तरफ रुजू नहीं करता, जो ज़बान पर आता है वो बक जाता है। तो प्यारी बहनों, क्या करना है, अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है। और आपने पीछे सूरत अल-हुजरात में भी तफसील से पढ़ा कि जो है वो जितने भी आपने वहाँ पे बड़े बड़े गुनाह कबीरा पढ़े थे उनका ताल्लुक जो है वो ज़बान से है, किसी का मजाक उड़ाना है या हम्ज़ और लम्ज़ है, तजस्सुस की बात है या गीबत और चुगली है, या फिर जो है वो बोहतान करना है। फिर आप देखें कि बाज़ औक़ात ये जो रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी की जाती है, क़त रहमी की जाती है, एक अमल होता है, और एक ज़बान के साथ अज़ियत देना पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को। तो ये चीज़ें सब क्या हैं? ये सब चीज़ें जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वो बात मुझे बड़ी मुतासिर करती है कि वो रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं उसका इतना ख्याल रखते थे और इतने उसके लिए संजीदा थे कि आप अपनी महफिल में ऐलान करते थे और आपको ये पता चल जाता था कि फलां शख्स जो है वो कतअ रहमी करने वाला है, तो आप कतअ रहमी करने वाले को हुक्म देते थे कि मेरी महफिल से उठकर चले जाओ, उसको अपनी महफिल से बाहर निकाल देते थे कि ये शख्स जो है ये सिला रहमी नहीं करता और कतअ रहमी करता है। तो आप देख लीजिए कि आप कहाँ पे खड़ी हैं और ज़बान की हिफाजत जो है उसका क्या हाल है। मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदेही रकीबुन अतीत, कोई लफ्ज़ इसकी ज़बान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद ना हो। और यहाँ पे ये जो रकीबुन अतीत है ये भी अल्लाह के जो फरिश्ते हैं ये उनकी सिफात हैं। फरिश्ते क्या करते हैं कि उधर से इंसान जो है वो अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकालता है और फौरन फरिश्ते जो हैं वो उसको नोट कर लेते हैं, क्योंकि फरिश्ते जो हैं रकीब हैं, निगरानी करने वाले, मुहाफिज, इंसान के कौल का भी और अमल का, इंतज़ार कर रहे हैं, अतीत हाजिर तैयार, फौरन उसको जो है वो नोट कर लेते हैं। और इससे अमल का क्या असूल सामने आता है कि हम अपनी ज़िंदगी से लायानी, फजूल और जो लहव बातें हैं ना उनको हम निकाल फेंके, निकाल बाहर करें और अपनी ज़बान की हिफाजत करें। और आप जो हैं वो ज़बान की हिफाजत पर जो है वो एक सीडी है आप ज़रूर सुने, दारुल ईमान ने उसको तैयार किया है, उसमें अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो सफ़र करते हैं और एक बूढ़ी खातून का वाकया मैंने तफसील से बयान किया है कि वो बूढ़ी जो है उसका रास्ता गुम हो चुका है और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में उससे मिलते हैं और उससे जो सवाल भी पूछते हैं वो सिर्फ कुरान की आयतों से जो है वो सवालों का जवाब देती है, अपने पास से कोई भी वो लफ्ज़ नहीं बोलती। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इतने हैरान हैं, इतने उसके किरदार पर मुतासिर हैं, और इस पर भी उनको हैरत थी कि इस बूढ़ी औरत को कुरान पर कितना अबूर है। और आखिर में जब वो बूढ़ी को उसके बेटों तक पहुंचा देते हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, तो वो बूढ़ी औरत के बारे में उसके बेटे बताते हैं कि हमारी वालदा ने पिछले 40 साल से कुरानी आयात के सिवा और कोई बात नहीं की, इस खौफ के मारे कि मुंह से कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जिसकी कयामत के दिन बाज़ पुरस हो। और अब आप देखें कि मसलन आप फोन पर बात करती हैं तो फोन डायल करने से पहले आप जरूर सोचें कि क्या ये फोन करना जरूरी है, इसमें जो मैं बात करने वाली हूं क्या ये जरूरी है, कहीं मैं गुस्से की वजह से या किसी की गीबत और चुगली करने के लिए तो नहीं मैं फोन करने बैठी। इसी तरह दो दोस्तों के दरमियान, एक महफिल के अंदर, घर के अंदर बाज़ औक़ात गैर जरूरी बातें होती हैं और कोई उसका इतना जो है वो फायदा अगर नहीं है तो फिर नुकसान भी नहीं है तो वक्त का ज़िया है ना। तो आप ज़रूर सोचें कि मैं जो बात अभी करने वाली हूँ तो इसका मुझे फ़ायदा होगा या कि नुकसान होगा, और अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ज़बान की हिफाजत करने वाला बनाए। और जो नेक और मुत्तकी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज़बान को तकवा की लगाम देते हैं। वजाअत सकरतुल मौती बिल हक, वजाअत सकरतुल मौती बिल हक, ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد, وَنُفِخَ فِي الصُّور, ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد। फिर देखो वो मौत की जांकुनी हक लेकर आ पहुंची, ये वही चीज है जिससे तू भागता था और फिर सूर फूंका गया, ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ। अब आप देखें कि सकरत किसे कहते हैं, सीन काफ़रा, बदमस्ती, बेहोशी, किसी भी चीज की मस्ती या मौत की सख्ती से के लिए लफ्ज बोला जाता है, और जब अकल जो है वो जायल हो जाती है। आपने पीछे भी पढ़ा था ना कि नशे की हालत में हो तो उस वक्त नमाज के करीब ना जाओ, वला तक्रबु सलाता व अंतुम सुकारा, तो सुकरान सुकारा, और इसी से सकरात का लफ्ज भी है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ये तिर्मिज़ी की रवायत है कि अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरा, अल्लाहुम्मा आइनी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत, ए अल्लाह मौत की सख्तियों और इससे तारी होने वाली बेहोशियों में मेरी मदद फरमा। हज़रत इमाम सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों से कहा करते थे, अगर कहीं मौत मिल जाए तो मेरे लिए ख़रीद लेना। जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो कहने लगे, मैं मौत की ख्वाहिश किया करता था, लेकिन अब मालूम हुआ दरअसल मौत बड़ा इम्तहान है। काश आखिरत का सारा सफ़र इस तरह का होता जैसे हम असा लेकर, लाठी लेकर हम गली में फिरा करते थे। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक, फिर देखो वो मौत की सख्ती हक लेकर आ पहुंची। हक से क्या मुराद है? जो ही मौत शुरू होती है इंसान पर हकीकत खुलना शुरू हो जाती है, वो हकीकत जिस पर दुनिया की जिंदगी में पर्दा पड़ा हुआ था, वो हकीकत जिसकी खबर अंबिया ने दी, वो हकीकत जिसके बारे में दलाइल कुरान ने दिए। और हकीकत से मुराद है कयामत और कयामत के दिन का हिसाब किताब और अल्लाह से मुलाकात। तो इंसान इसी हकीकत से जो है वो कन्नी कुतराता था। इंसान दुनिया में बेनत्थे बैल की तरह छूटा फिरना चाहता था, इंसान अपनी मनमानी करना चाहता था, इसीलिए वो आखरत को कयामत को झुठलाता था। तो मौत की बेहोशी जो ही तारी हुई उसके साथ ही कयामत लगी हुई है। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वही चीज़ है जिससे तू भागता था। अब आप देखें कि तहीद जो है हा या दाल इसका मादा है और इसके मानी हैं भागना, बिदकना। तो यही वो चीज़ है, ए इंसान रास्ते से कतरा कर तू चलता था। कयामत के बारे में तेरा ये रवैया था कि तू इससे बेपरवाह होकर ज़िंदगी बसर करता था, हालांकि कयामत के आसार तो कदम कदम पर मौजूद थे। लेकिन जो सीधी राह इख्तियार न करना चाहें तो फिर वो क्या करते हैं कि वो कतरा कर चलते हैं। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वही चीज़ है जिससे तू हट जाता था, जिससे तू बिदकता था, भागता था। अब आप देख लें कि सकरातुल मौत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को मिटा देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बीमारी में मौत पाई, वफ़ात पाई, जिस मर्ज़ में आपकी वफ़ात हुई, आपकी बेचैनी का हाल ये था कि पानी का प्याला साथ रखा था जिसमें आप बार बार हाथ अपना डालते, चेहरे पर मलते, अपनी चादर कभी चेहरे मुबारक पर डालते और कभी हटा लेते। आप पर जब मौत की गशी तारी होने लगी तो आप अपने चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते और फरमाते जाते, सुबहानल्लाही इन्ना लिल मौती लसकरात, सुबहानल्लाह मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तकलीफ़ देखने के बाद अब मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। इसे बुखारी ने रवायत किया है। हज़रत अमर बिन आस, जिन्होंने मिस्र को फ़तह किया, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया, अल्लाह की तलवार, वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर कहा करते थे, मुझे उन लोगों पर ताज्जुब है जिनके होश हवास मौत के वक्त दुरुस्त होते हैं मगर मौत की हकीकत बयान नहीं करते। जब ख़ुद वो अपनी मौत के किनारे पर पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो, जिन्हें मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, उन्होंने उन्हें उनकी बात याद दिलाई। हज़रत अमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मौत की कैफियत नाकाबिले बयान है, बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है नंबर एक, गोया आसमान जमीन पर टूट पड़ा है और मैं दोनों के दरमियान पिस रहा हूं। अब आप देखें कि कितनी तकलीफ होगी। नंबर दो, मेरी गर्दन पर जैसे कोई पहाड़ रखा हुआ है। नंबर तीन, पेट में खजूर के कांटे भरे हुए हैं। नंबर चार, और ऐसे मालूम हो रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही है। अल्लाहुम्मा ला तजलना मिन्हु, या अल्लाह तू हमारे लिए आसानी कर देना। और ये कौन लोग थे? ये रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी थे। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मौत का लम्हा दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज़्यादा हौलनाक है। ये आरों के चीरने से ज़्यादा अजियतनाक, कैंचियों के काटने से ज़्यादा सख्त और हंडियों के उबालने से ज़्यादा तकलीफ देह है। अगर मुर्दा जिंदा होकर लोगों को मौत की सख्ती से आगाह कर दे तो लोगों का आराम और नींद ख़त्म हो जाए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये दुआ मांगा करते, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैयल मौत, या अल्लाह मुझ पर मौत की सख्ती आसान कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हों की जब वफ़ात का वक्त करीब आया और उन पर जो है वो मौत के आसार आना शुरू हुए तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी परेशान हुई। कहने लगी, मेरे बाप को अजीब बीमारी लग गई है, अजीब बीमारी है। मतलब उनकी तकलीफ़ देकर वो समझी कि बीमारी बढ़ गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हों ने कहा कि ऐ मेरी बेटी, ऐ आयशा, ये बीमारी नहीं है। फिर आपने ये आयत पढ़ी, वजाअत सकरतुल मौत बिलहक ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। तो प्यारी बहनों, ये मौत की सख्ती जो है ये बड़ी शदीद है, ये बड़ी तकलीफ़ देह है। और अल्लाह ताला हमारी मौत को हमारे लिए आसान कर दे। और ज़रूरत है इस बात की कि हम मौत की जो है वो जो मौत जो बहुत बड़ी आफत है, जो बहुत बड़ी मुसीबत है, और हर एक पर ये मौत आने वाली है। इंसान ख़्वाह इससे कितना ही क्यों ना भागे और फ़रार हासिल करे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करनी चाहिए। आप पढ़ चुकी हैं ना सूरत आल इमरान आयत 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। फिर इसी तरह सूरत क़यामा आयत 26-29 तक भी यही पैगाम है, कल्ला इज़ा बलगति तराक वक़ील मन राक वज़न्ना अन्नहु अल-फ़िराक वल्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़। जब जान हलक तक पहुंचती है तो कहा जाता है कि है कोई झाड़ फूंक करने वाला। आदमी ये समझता है कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ गया, उस वक्त पिंडली के साथ पिंडली मिल जाती है। वह नुफ़िख़ फ़िस्सूर, और फिर सूर फूंका गया। अब आप देखें कि इससे मुराद वो सूर है, वो फूंक है कि जिसके साथ ही तमाम मरे हुए लोग दोबारा जो है वो जिंदा होकर उठ खड़े होंगे। ज़ालिका यौमुल वईद, ये वो दिन है ऐ इंसान जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था। और आप देख लें कि वईद का लफ्ज़ जो है ये दो मानों में इस्तेमाल होता है। क्यों? ये वो आइंदाल ज़विल अज़दाद में से है। एक तो वादा किसी चीज़ का, जैसे क़यामत का तुझे वादा दिलाया जाता था कि क़यामत आकर रहेगी और तू भूला रहा, और दूसरा क़यामत का डर और खौफ। तो दोनों तरह से ही है कि क़यामत से तुझे डराया जाता था। वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद, हर शख्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हांग कर लाने वाला है और एक गवाही देने वाला है। और मुफस्सरीन कहते हैं इससे मुराद वो दो फरिश्ते हैं जो कुरामिन कातिबीन हैं, जो दुनिया में इंसानों के अक्वाल और अफ़ाल का रिकॉर्ड मुरतब करते जाते हैं। और जो ही क़यामत के दिन सूर की आवाज़ बुलंद होगी, हर इंसान अपनी कब्र से उठेगा, तो दोनों फरिश्ते फौरन इंसान का चार्ज आकर संभाल लेंगे। वजाअत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वो आएगा, इंसान आएगा, कुल्लो नफ्सिन, हर शख्स, हर शख्स उस वक्त आएगा, माहा उसके साथ होगा। नफ्स का लफ्ज़ जो है अरबी जबान में ये मुअन्नस होता है, इसलिए हा की ज़मीर आई है। तो हर शख्स जब आएगा तो उसके साथ दो फरिश्ते होंगे, एक है साइकुन, सीन व काफ रूट है ये, और ये बाजार को भी कहते हैं, और क्योंकि बाजार की तरफ इंसान हंका चला जाता है, इसी तरह किसी को पीछे से हांक कर चलाना, जैसे चरवाहा जानवरों को हांकता है उसको भी कहते हैं। सवाक ड्राइवर को भी कहते हैं जो गाड़ी चलाता है, उसको हांक रहा होता है ना। तो हांक कर उसके साथ लाने वाला एक फरिश्ता है, ये कौन सा फरिश्ता है? यानी एक फरिश्ता जो है किरामन कातिबीन से, वो इंसान को हांक कर अल्लाह की अदालत की तरफ ले के जाएगा, वह शहीद, और एक है गवाही देने वाला, और दूसरा फरिश्ता जो है उसने उसका नामा माल उठाया हुआ होगा और वो जो है वो गवाही देगा। लकद कुंत फी गफलतिम मिन हाजा फकशफना अनक गिताक गिताक फबसरुक अलयौम हदीद। उस वक्त कहा जाएगा लकद कुंत फी गफलतिम मिन हाजा, इस चीज की तरफ से तू गफलत में था। तो ये कौन सी गफलत है जिसका जिक्र किया जा रहा है? अल्लाह के दरबार की पेशी, यानी इंसान जो है वो कयामत से और अल्लाह के दरबार में पेशी से डरता रहा। यानी अगर डरता तो तैयारी करता ना, लेकिन इंसान ने क्या किया कि वो इस बात से बेनियाज रहा कि उसे मरना है और अल्लाह के पास जो है वो हिसाब किताब के लिए जो है वो पहुंचना है। तो ये है वो चीज़ जिससे इंसान तू गफलत में था। फकशफना अनका गिताअका, बस हटा दिया हमने तुझसे तेरा पर्दा। फबसरुकल यौम हदीद, और आज तेरी निगाह खूब तेज है। अब आप देखें कि कशफना, ये लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, काफ शीन फा इसका रूट है, और इसके मानी होते हैं हटा देना, परे कर देना, खोल देना। गिता का गैन त्वा वो इसका मादा है, इसका मानी है हर वो चीज़ जो किसी चीज़ पर बतौर कवर रखी जाए और इसे मुकम्मल तौर पर ढांप दे, जैसे खाना जो है उसके ऊपर दस्तरखान जब दे दिया जाए तो खाना छुप जाता है ना, इसी तरह जैसे दवात है और उसके ऊपर एक ढक्कन है तो ढक्कन आप देते हैं तो वो भी अंदर स्याही छुप जाती है। तो गिता का गिता या गतऊ का लफ्ज़ जो है पर्दे के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने वो पर्दा हटा दिया है, वो पर्दा कहाँ पड़ा हुआ था? इंसान की आँखों पर, उसके दिल पर, उसके कानों पर, क्योंकि इंसान जो है वो क्या करता है कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी नहीं करता। तो अब कहा जा रहा है फबसर उकल यौम हदीद, आज तेरी निगाह खूब तेज है। और आज तेरी निगाह खूब तेज है, ये फरिश्ते तंज के तौर पे कहेंगे कि आज तुम्हें खूब नजर आ रहा है। और आप पढ़ चुकी हैं सूरत आराफ में भी और पहले भी कि दूर से तहद्दे निगाह जो है वो जन्नती भी देख सकेंगे और जहन्नुमी भी देख रहे होंगे। जैसे जन्नती जन्नत में बैठे हुए बातें कर रहे होंगे, इतने में कहेंगे फलां हमारा दोस्त का नहीं पता चला कहाँ है, और वो दूर देखेंगे कि वो जहन्नुम के अंदर जो है वो आग में है, कहेंगे अरे वो देखो फलां जो है वो तो हमें तो दुनिया में नेकी का हुक्म देता था और देखो वो जहन्नुम की आग के अंदर है। तो वहां पे दूर दूर तक नजर आएगा, हर गोशा इंसान के सामने बेनकाब हो जाएगा। हदीद हा दाल दाल इसका मादा है, किनारे को भी कहते हैं, जैसे हद बंदी होती है ना, जैसे छुरी की धार, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आज तेरी निगाह खूब तेज है, अच्छा तुम्हें दुनिया में नहीं समझ आती थी जब मेरे पैगंबर ने बताया था, जब मेरी आयतें नाजिल होती थी, अच्छा आज तुम्हें पता चल रहा है कि अल्लाह ने क्या फरमाया था। फकाला करीनहु हाजा मा लदैया अतीत, उसके साथी ने अर्ज किया ये जो मेरी सपुर्दगी में था वो हाजिर है। ये जो करीन है इसके मानी क्या है? इसके मुफस्सरीन ने दो मानी बयान किए हैं। एक मानी ये है कि इससे मुराद फरिश्ता है, जिसके बारे में आयत 21 में भी आपने पढ़ा कि फरिश्ता ये कहेगा कि इस शख्स का नामा अमाल मेरे पास तैयार है। मुफस्सरीन की दूसरी राय है कि यहाँ पे करीन से मुराद शैतान है। جو دنیا میں انسان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور قیامت کے دن وہ شیطان جو ہے وہ اپنے دوست سے، جسے دنیا میں وہ برائیوں پر آمادہ کرتا تھا، اس سے الگ ہو جائے گا اور کہے گا کہ اچھا یہ ہے وہ شخص جس کو میں نے اپنے قابو میں کیا تھا اور میں نے اس کو جہنم کے لیے تیار کر دیا، اور اب یہ آپ کی خدمت کے لیے جو ہے وہ حاضر ہے۔ تو یہاں پر قرین کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک جو ہے وہ شیطان کے معنی میں اور دوسرا جو ہے وہ فرشتے کے معنی میں۔ اتیت کا پڑھی چکی ہیں، عین تا دال اس کا مادہ ہے، تیاری سے متعلق، سامان تیار کرنا، ضرورت سے پہلے کسی چیز کو ذخیرہ کر لینا۔ جیسے آپ دعوت کرتی ہیں اور دعوت کے ہونے سے پہلے ہی آپ ساری چیزیں تیار کر کے رکھیں، آپ نے سفر پہ جانا ہے تو اس سے پہلے آپ ساری چیزیں تیار کر کے رکھیں، تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ پوری تیاری جو ہے وہ مکمل ہوگی، اور اس وقت جو ہے شیطان کہے گا کہ یہ ہے وہ شخص جو کہ دنیا میں میں اس کا دوست تھا، آج یہ پوری طرح جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے میرے پاس تیار ہے، آپ اسے لے لیجئے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بھی اس کو کیا جاتا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ شخص جس کا ریکارڈ، نامہ اعمال پوری طرح تیار ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ القیہ فی جہنم کل کفار انید، حکم دیا جائے گا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے اناد رکھتا تھا۔ القیان، یہاں پہ یہ تسنیہ کا صیغہ تھا، نون تسنیہ کا گر چکا ہے کہ تم دونوں ڈال دو، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کو حکم دیں گے۔ یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ سائقوں و شہید، تو وہ جو فرشتے جو قبر سے اٹھتے ہی مجرم کو گرفتار کر کے اللہ کی عدالت میں حاضر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے حکم دیں گے کہ تم دونوں جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دو، کل کفار انید، ہر کٹے کافر کو۔ اب آپ دیکھیں کہ کل جو ہے یہاں پہ اس کے معنی ہیں کہ ہر، تمام، کفار یہ اس کے ایک معنی ہے سخت نشکرہ، اور دوسرے معنی ہے کہ سخت منکر حق، سخت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا۔ اور انید جو ہے، عین نون دال اس کا روٹ ہے، اور اندہ کے معنی پاس کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح انادا حق کی راہ میں مخالفت کرنا، اور جو انید ہوتا ہے یعنی سخت مخالفت کرنے والے کے لیے انید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو جہنم میں پھینکے جائیں گے ان کی دو صفات بتائی گئی ہیں، یہاں پہ آپ ان صفات کو اب نوٹ کرتی جائیے۔ تو آیت نمبر 24 میں دو صفات ہیں، ایک ہے کفار اور دوسرا ہے انید۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب اگلی صفات آپ آیت نمبر 25 میں پڑھیں کہ اس کی تیسری صفت کیا تھی، منع للخیری، خیر کو روکنے والا۔ منع جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ مبالغے کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، رکنا بھی اور روکنا بھی، خود بھی نہیں کرتے تھے اور جو کر رہے ہوتے تھے ان کو بھی نیکی کے کاموں سے روکتے تھے۔ منع، خود رکنا اور اوروں کو نیکی کے کام سے روکنے والے۔ اور آپ دیکھیں کہ خیر کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک مال کے لیے، دوسرا بھلائی کے لیے۔ تو اگر مال کے معنی میں لیا جائے تو مال میں یہ کسی کا حق نہیں ادا کرتے تھے، نہ اللہ کا نہ اللہ کے بندوں کا، اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے تھے کہ تم جو ہے وہ زکوٰۃ دو یا صدقات دو۔ اور اگر اس کو جو ہے وہ بھلائی کے معنوں میں لیا جائے تو پھر معنی ہے کہ خود بھلائی کے رستے سے رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، پوری قوتیں خرچ کرتے تھے کہ نیکی کسی طرح پھیلنے نہ پائے۔ پھر چوتھی صفت ہے معتدن، معتدن جو ہے اس کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا۔ عین تا معتدن، آپ دیکھیں اس کا روٹ کیا ہے معتدن کا، اصل میں اس کا مادہ عین دال واو ہے، عین دال واو عداوت، دشمنی، اسی سے تعدی ہے، اور اس کے معنی ہیں سخت دشمنی کرنے والا، ہر کام میں اخلاق کی حدوں کو توڑنے والا، اپنی خواہشات کی خاطر سب کچھ کرنے والا، حرام طریقے سے مال سمیٹنا، حرام راستے پہ خرچ کرنا، زبان کا غلط استعمال، زبان پر کوئی پابندی نہیں، ہاتھ کسی ظلم سے رکتے نہیں، اور بھلائی کے راستے سے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالنے والا، معتدن، حد سے گزرنے والا، یہ چوتھی صفت ہے. اور پانچویں ہے مریب، شک میں پڑا ہوا تھا. مریب جو ہے اس کے دو معنی ہیں یہاں پہ، ایک شک کرنے والا، دوسرا شک میں دوسروں کو ڈالنے والا. تو یہ کیسا شخص تھا کہ خود بھی اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، وحی کے بارے میں خود بھی شک میں تھا، اور دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کرتا تھا. لوگوں کو کہتا تھا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، اور پتہ نہیں حدیثیں سچی ہیں کہ نہیں، اور ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ تو فن کی زندگی ہے، تو مزے کرنے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ چھ صفات بتانے کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 26 میں کہتے ہیں الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید. یہ وہ شخص تھا جس نے بنا لیا تھا اللہ کے سوا دوسرا معبود، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. تو اب یہاں پہ جو ہے وہ اس کی چھٹی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ شرک کرتا تھا. حالانکہ کفار کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اس کو الگ سے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. اب آپ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اللہ کی بندگی کرتی ہیں اور یا پھر جو ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی، یا زمانے کے رسم و رواج کی، یا پیئر پریشر، یا جیسا دیس ویسا بیس. یاد رکھیے شرک تمام دین اور اخلاق کی جو ہے وہ جڑوں کو کاٹنے والی ہے. فساد فی الارض کی یہ جڑ ہے. فالقیاہ فی العذاب الشدید، فالقیاہ، یہاں پہ بھی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، پس تم دونوں ڈال دو اس انسان کو جس کی یہ صفات ہیں، فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات گنوائی ہیں، کہا کہ یہ ہیں وہ صفات جو انسان کو جہنم کا مستحق بنا دیتی ہیں. آیت نمبر 27، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کانا فی دلال بعید. اس کے ساتھی نے عرض کیا، اور یہاں پر اس کے ساتھی سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد شیطان ہے جو دنیا میں اس شخص کے ساتھ لگا ہوا تھا. اب شیطان اور یہ بد کردار شخص اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں. جو برا شخص ہے، جو جس کی یہ صفات آپ نے اوپر پڑھی ہیں، وہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ، یہ شیطان میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس نے مجھے جو ہے وہ گمراہ کر کے چھوڑا، اس کو سزا ملنی چاہیے. شیطان کہے گا، قالا قرینہ، تو اس کا ساتھی شیطان کہے گا، ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی دلال بعید، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. میرا اس پہ کوئی زور نہیں تھا، میں اس پہ زبردستی تھوڑی کر سکتا تھا. یہ خود ہی نیکی سے نفرت کرتا تھا اور بدی سے محبت کرتا تھا. اس لیے اس شخص کو نبیوں کی بات تو پسند نہ آئی، قرآن کی بات تو پسند نہ آئی، اور میری جو ترغیبات تھیں یہ اس پہ پھیلتا چلا گیا. ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی دلال بعید. اب آپ دیکھ لیں کہ شیطان، قرین کا لفظ قرآن میں زیادہ تر شیطان کے لیے استعمال ہوا، تو اس دن شیطان اپنی برات کا اظہار کر دے گا، کہے گا میں نے نہیں گمراہ کیا تھا، یہ خود ہی گمراہ تھا، گمراہی کی باتیں قبول کرتا تھا اور نیکی کی باتیں تو اس کو اچھی نہیں لگتی تھیں. جب یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، قال لا تختصموا لدي، میرے حضور جھگڑا نہ کرو. تختصموا خصم سے ہے، خاص واد میم، اور جھگڑے کے لیے خصام کا لفظ پہلے پڑھ چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تمہارا جو جھگڑا ہے، یہ جو الزام بازی ہے، اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لا تختصم لدیا، ڈانٹ ہوگی کہ میرے حضور جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. وقد قدمت، اب یہاں پر جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا. وقد قدمت، اور میں نے پہلے ہی بھیج دی تھی. الیکم، تمہاری طرف. خبر آپ بریکٹ میں لکھ لیں کہ میں نے تو پہلے ہی عذاب کی خبر تمہاری طرف بھیج دی تھی. بالوعید یعنی عذاب کی وعید، اس کا ڈراوا. ماں یبدل القول لدیا، ماں یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید. ماں یبدل القول لدیا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، یعنی فیصلہ بدلنے کا میرے ہاں رواج نہیں ہے. تو میں نے تو پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو بد کردار ہیں وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، تو اب یہ قانون بدلا نہیں جا سکتا. ماں یبدل القول لدیا، میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، بدلی نہیں جاتی. وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا بھی نہ ہو اور میں اس کو پکڑ کر جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ پھینک دوں یا جہنم کے اندر ڈال دوں. تو میرا طریقہ کیا ہے کہ جیسے لوگ عمل کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ سزا یا جزا جو ہے وہ پاتے ہیں. تو میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں فیصلے بدل بھی جاتے ہیں نا. کوئی ہائی کورٹ میں جاتا ہے، پھر وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، پھر وہ ادھر سے سفارشیں ڈلواتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بات جو ہے وہ پلٹی نہیں جاتی. لوگوں، قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن ہوگا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر رحم کرے، اور مجھے اور آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو حسن عمل کرنے والا بنائے. آیت نمبر 30 جو ہے اور سخت ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے، اس سے کہیں گے هل امتلأت، کیا تو بھر گئی. میم لام حمزہ ملا سے ہے بھرنا، تو کیا تو بھر گئی، کیا تو پر ہو گئی. وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے. مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں کہ میرے اندر اب مزید آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے، میں تو بھر گئی ہوں، ابھی اور بھی باقی رہتے ہیں. اور دوسرے اس کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جب اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی هل من مزید، اور لائیے، جتنے مجرم اور ہیں انہیں لے آئیے. اور مجرموں کو جہنم میں اس طرح ٹھونس ٹھونس کر بھر دیا جائے گا کہ سوئی کی بھی گنجائش نہیں رہے گی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 30، اس سے بھی جو جہنم کا جو عذاب ہے اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا پتہ چلتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جہنم اس دن باتیں کرے گی. یہ اللہ کی کبریائی ہے اور اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو جسم کے اعضاء کو حکم دے تو وہ بولنے لگے، وہ چاہے تو زمین بولنے لگے، اور وہ چاہے تو جہنم جو صامت ہے خاموش، اس کو ناطق بنا دے، اس کو بولنے والا بنا دے. تو اور یہ جو جہنم کا بولنا ہے، یہ اللہ کے غضب کی منظر کشی ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہوگا کہ اب نافرمانوں کو جہنم میں پھینکواتا چلا جائے گا، اور پھر جہنم سے پوچھے گا کہ تیرا پیٹ اچھی طرح بھر گیا ہے یا نہیں بھر گیا. اب آپ دیکھیں، کبھی آپ نے اگر سفر کیا ہو یا دیکھا ہو، جیسے انڈیا میں، پاکستان میں، کہ ویگنز ہوتی ہیں اور اوپر بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں ٹرک اور بسیں، اور نیچے بھی اندر ٹھونسے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہ سانس تک بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے. اور غریب عوام جو ہے وہ سفر کرتی ہے نا، اور یعنی اب ڈائیو جو ہے، ڈائیو کا سفر بھی نکل آیا، لیکن جو ویگنز میں اور اسی طرح غریب لوگ جو ہیں وہ ٹھونسے جاتے ہیں تو سانس تک لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر، اس مثال کی یہاں پہ جو جہنم کے عذاب کی اللہ تعالیٰ تصور دلا رہے ہیں، اس کی آپس میں یہاں پر کوئی نسبت نہیں ہے. लेकिन आप एक थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं कि जगह ना हो और ज़्यादा लोग कहीं हों तो कितनी मुश्किल होती है। इसी तरह आप देखें कि हदीस में आता है कि आग में लोग डाले जाएंगे और जहन्नुम कहेगी हल मिन मज़ीद, क्या कुछ और भी है? अल्लाह ताला जहन्नुम में अपना पाँव रखेगा, जिससे जहन्नुम पुकार उठेगी कत कत, बस बस, कत्तिन कत्तिन, बस बस। ऐसे ही बुखारी की रवायत है। और जन्नत के बारे में सही मुस्लिम की रवायत से पता चलता है कि जन्नत में अभी खाली जगह बाकी रह जाएगी, तो अल्लाह ताला इसके लिए नई मखलूक पैदा करेगा जो वहाँ पे आबाद होगी। वह उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल्मुत्तकीन गैर बईद। अब यहाँ से जन्नत का ज़िक्र है और जो लोग जन्नत में जाएंगे उनकी सिफ़ात का ज़िक्र किया जा रहा है। पीछे आपने जहन्नमियों की सिफ़ात पढ़ी और फिर जहन्नम के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे जन्नत का ज़िक्र है और बड़ा ही ख़ूबसूरत अंदाज़ है। वह उज़्लिफ़त, ज़ा लाम फ़ा, ज़ुल्फ़ जो है ये करीब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम ज़ुल्फ़ होना, मैं ये लफ्ज़ भी पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ कि जो दो बहनों के शोहर होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के हम ज़ुल्फ़ बन जाते हैं ना, क्योंकि रिश्तेदारी की वजह से कि दो बहनों से उनकी जब शादी हुई तो आपस में वो करीबी रिश्तेदार जो हैं वो बन गए। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो ये हमारे बाल जो हमारे माथे के बड़े करीब होते हैं तो उनके लिए भी ज़ुल्फ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, और ये लफ्ज़ जो है ये नज़दीक और करीब होने के लिए इस्तेमाल होता है। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु, और करीब लाई जाएगी, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु, और करीब कर दी जाएगी जन्नत। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जन्नत करीब की जाएगी, तो ये जो है ये जो जन्नती हैं ये उनकी इज्जत और इकराम के लिए ऐसा होगा। एक होता है ना कि आप चलकर कहीं जाएं वहां पे पहुंचे, लेकिन जो जन्नती हैं आप तसव्वुर करें कि उनकी क्या इज्जत होगी, क्या उनकी शान होगी कि बगैर चले बगैर सवारी पर बैठे, बस जन्नत उनके करीब कर दी जाएगी, खुद जन्नत उठाकर उनके पास लाई जाएगी। सुभान अल्लाह। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन। तो कौन लोग होंगे जिनके जन्नत करीब की जाएगी? मुत्तकीन के, गैरा बईद, कुछ भी दूर ना होगी। अब यहाँ पे गैरा बईद से पता चलता है कि जन्नत जो है वो थोड़ी भी दूर नहीं होगी, बिल्कुल करीब होगी। गैरा बईद यानी मजीद तसव्वुर दिलाया जा रहा है कि बहुत दूर से नहीं करीब लाई जाएगी, बस करीब ही तो होगी और अहले जन्नत की इज्जत अफजाई के लिए मजीद करीब कर दी जाएगी। अच्छा, अब आप देखें कि ये कौन लोग हैं कि जन्नत जिनके करीब की जाएगी। इनकी पहली सिफत आयत नंबर 31 से पता चलती है, लिल मुत्तकीन, तकवा रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले। मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी जो है हर ऐसे शख्स को कहते हैं जो अल्लाह से डरता है और अल्लाह से डर कर अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को रोते देखकर पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला कयामत के दिन मुझे आग में ना फेंक दे, और अल्लाह को तो किसी की परवाह नहीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब फौत हो गए तो उनकी बीवी फातिमा के पास लोग ताज़ियत के लिए आए, बड़े बड़े स्कॉलर उनके पास ताज़ियत के लिए आए। तो उनकी बीवी फातिमा ने अपने शौहर के बारे में कहा कि खुदा की कसम वो नमाज, रोज़ा, नवाफिल में वो तुमसे बढ़कर नहीं थे, लेकिन वो अपने रब के डर से रोने वाले थे और वो अपने रब से बहुत डरने वाले थे, और मैंने उम्र से ज़्यादा किसी को अल्लाह से डरते नहीं देखा। अब आप देख लें कि बीवी जो है वो गवाही दे रही है कि मेरा शौहर जो था वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाला था। और इमाम उज़ाई रहमतुल्लाह अलैह بہت عبادت گزار، متقی، رونے والے، ایک عورت ان کے گھر آئی اور مسلح جو تھا نا بھیگا ہوا تھا، وہ سمجھی شاید کسی بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا کہ اس کو پاک کرنا چاہیے، تو ان کی بیوی بولی کہ یہ امام عزائی کے وہ آنسو ہیں جو وہ اپنے سجدوں کے دوران جو ہیں وہ بہاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہر وقت کا ایک دھڑکا کہ کہیں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، ہر وقت کا ایک ڈر، ہر وقت کا ایک خوف کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا کوئی عمل میرے رب کو جو ہے وہ ناراض نہ کر دے۔ تو پہلی صفت ہے تقویٰ، ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دوسری صفت جو ہے وہ اواب ہے، کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ دوسری صفت ہے اواب، اور آیت نمبر 32 میں تیسری صفت ہے حفیظ کی۔ اواب کسے کہتے ہیں؟ اواب کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اور اواب کے معنی ہیں رجوع کرنے والا، اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور شعبی اور مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اواب وہ شخص ہے جو خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اواب کون ہے، یعنی رجوع کرنے کے معنی کیا ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں اور اپنی نیکیاں اور وہ باتیں یاد کر کے نہیں وہ خوش ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اواب وہ شخص ہے جو اپنی ہر محفل اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور فرمایا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اواب اور حفیظ وہ شخص ہے جو اپنی ہر محفل سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم انی استغفرک مما اسبت فی مجلسی ھذا، پاک ہے اللہ اور اسی کی حمد ہے، یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے اس محفل میں کی ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی جو ہم ہر سبق کے آخر میں پڑھتے ہیں، میں آخر میں پڑھتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی محفل سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیں گے جو اس محفل سے سرزد ہوئے ہوں۔ تو اواب جس کا روٹ ہے حمزہ واو با، اور اس کے معنی کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے، تو اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے نافرمانی اور خواہشات نفس کی پیروی کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہر وہ چیز کو چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ہر وہ چیز کو اختیار کر لے جو اللہ کو پسند ہے، اور اگر گناہوں کی طرف اس کا قدم ذرا سا بھی اٹھے تو گھبرا اٹھے، توبہ کر کے اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا اور اپنے تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ پھر جنتیوں کی تیسری صفت ہے حفیظ۔ حفیظ کے معنی ہوتے ہیں حفاظت کرنے والا، کس چیز کی حفاظت کرنے والا؟ روپیہ، ڈالر، پیسے، اپنا حسن، اپنا آرام، اپنی ہی خواہشات کی پیروی کرنے کی حفاظت کرنے والا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو اللہ کے حدود، اس کے فرائض، اس کی حرمتیں، اس کی سپرد کی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرے، اس کے حقوق کی نگہداشت کرے، وعدہ کر لے تو پھر اس کی حفاظت کرے کہ مجھے تو وعدہ نبھانا ہے، توبہ کر لے تو اس کی حفاظت کرے کہ اب میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے، اور پھر اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں میں اپنے کسی کال یا فیل سے میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد رکھنے والا حفیظ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے ان کی تلافی کرے تو وہ حفیظ ہے۔ और رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ جو شخص شروع دن میں چار رکعتیں اشراق کی پڑھ لے وہ اواب اور حفیظ ہے. تو یہ ہے تیسری صفت. چوتھی ہے من خشی الرحمن بالغیب, ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا. پھر اس کے بعد چوتھی صفت من خشی الرحمن بالغیب, جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ عام طور پہ جب ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں نا, پھر ہمیں یقین آتا ہے, پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. لیکن یہاں پہ خاص طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نظر نہ آنے والے رب سے ڈرتا تھا. اللہ نظر نہیں آتا تھا لیکن وہ اللہ سے ڈرتا تھا. اور اسی طرح اس کے دوسرے معنی ہیں کہ اسے پتا تھا کہ اللہ رحیم ہے, لیکن پھر بھی وہ جو اللہ کی صفت رحمت ہے اس سے اچھی طرح واقف ہونے کے بعد پھر بھی وہ گناہ نہیں کرتا تھا. وہ اللہ سے جو ہے وہ بے دیکھے ڈرتا تھا, بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا. من خشی الرحمن بالغیب. اور یاد رکھیں کہ ایک خشیت ہے, ایک خوف ہے. خوف ہوتا ہے کسی کی طاقت کے مقابلے میں اپنی کمزوری کا احساس, کہ انسان دل میں خوف پیدا ہو گیا. خشیت ہوتی ہے ایسی ہیبت جو کسی کے عظمت کے تصور سے آدمی کے دل پر طاری ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ خوف کا لفظ نہیں, خشیت کا لفظ آیا ہے. بتانے کے معنی یہ ہیں کہ مومن کے دل پر اللہ کے ڈر سے سزا کا خوف نہیں ہوتا, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی عظمت اور بزرگی کے احساس سے اس پر ہیبت چھائی رہتی ہے. من خشی الرحمن بالغیبی, جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا. سبحان اللہ. تو ایمان بالغیب جو ہے یہ مومنانہ صفات میں سے ہے. صفت نمبر پانچ, وجاء بقلب منیب, اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. منیب جو ہے نوب اس کا روٹ ہے, اور شہد کی مکھی کو بھی کہتی ہیں. کتنی دور چلی جائے, درختوں پر, پھولوں پر, باغوں میں, راستوں میں, ادھر ادھر راستہ بھولتی نہیں, واپس اپنے چھتے کے پاس آتی ہے. تو انسان جو ہے غلطیاں ہو گئیں, گناہ ہو گئے, دور چلا گیا گناہوں میں, لیکن لوٹ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے. منیب اس کی صفت ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ, اور جو دلے گرویدہ لیے ہوئے آیا, اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. تو منیب کون ہوتا ہے؟ جو کہ عاجزی اور انکساری سے اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے. اللہ کا اطاعت گزار دل رکھنے والا. یہ منیب سلیم کے معنی میں ہے. سلیم سلامتی والا دل, جو کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو. تو یہاں پر جو ہے اللہ کے دین کی عظیم حکمت بتائی جا رہی ہے. ایسا دل جو کہ ہر حال میں پر امید رہتا ہے, جو کسی حال میں اللہ سے مایوس نہیں ہوتا, جو مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے, جو خوشیوں اور خوشحالیوں پہ جو ہے وہ شکر کرتا ہے. تو قلب منیب لے کر آیا. آرزویں خوں ہوں یا حسرت پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. آرزویں خوں ہوں یا حسرت پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. انشاءاللہ. تو جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی, پھر اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے ادخلوہ بسلام, کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اس میں. ہا کی ضمیر جنت کے لیے آئی ہے. ذالک یوم الخلود, وہ دن ہوگا حیات ابدی کا دن. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا. تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی تو انہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. اور سلامتی کے معنی کیا ہیں؟ کہ فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے, اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہا جائے گا, اور جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی صفت تقویٰ تھی اور آخری صفت جو ہے وہ قلب منیب کی ہے. تو تقویٰ جو ہے اس کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں, اور قلب منیب جو ہے दरअसल ऐसा दिल है जो हर तरफ से रुख फेर कर अल्लाह की तरफ मुड़ जाए, और जिंदगी भर उसके दिल पर जो हालत भी गुजरे वो बार बार अल्लाह की तरफ पलटता रहे। मरते दम तक इनाबत पर कायम रहना, लहुम्मा यशाउन फीहा व लदीना मजीद, वहाँ उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, और हमारे पास इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ इनके लिए मौजूद है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, नंबर एक, कि जो कुछ वो चाहेंगे वहाँ पे जन्नत में उन्हें मिलेगा। नंबर दो, मज़ीद हम उन्हें वो कुछ देंगे जिसका तसव्वुर भी इनके दिल में नहीं आया और कि वो उसको हासिल करने की कोशिश करें। तो ये जो आखिरी बात कही, और इस सिलसिले में वो आप हदीस भी बार बार सुन चुकी हैं कि जन्नत जो है, जो ना किसी आँख ने देखी ना किसी दिल में उसके बारे में तसव्वुर गुजरा, और ना ही किसी कान ने उसके बारे में सुना, तो उससे भी अच्छी और ख़ूबसूरत है जन्नत जो अल्लाह ताला ने अपने मुत्तकी बंदों के लिए तैयार कर रखी है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और हम अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर लीजिए जिनके लिए जन्नत जो है वो तैयार की गई है। वकम अहलकना कबलहुम मिन करनिन हुम अशद्दु मिनहुम बतशन फनक्कबू फिल बिलाद हल मिन महीस। तो ये सूरत क़ाफ़ की आखिरी आयात हैं, आयत नंबर 36 से 45 तक। एक तरफ कुरैश को तंबीह की गई है और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की गई है, बल्कि उनको तसल्ली दी गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वकम अहलकना कबलहुम, और हमने इन अहले मक्का से पहले, कम अहलकना, कितनों को हमने हलाक किया, कबलहुम अहले मक्का से पहले, मिन करनिन उम्मतों को क्यों हलाक किया, उनके कुफ्र और शिर्क की वजह से, हुम अशद्दु मिनहुम बतशन, वो इनसे बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। तो अशद्दू जो है इसके मानी हैं कि शदीद, और बदशन जो है पकड़ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि सख्त पकड़ के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि उनकी, जैसे किसी चीज़ को सख्ती के साथ पकड़ लेना, तो उनकी पकड़ जो थी वो बड़ी सख्त थी वो। और यहाँ पे बदशन के मानी क़ुव्वत के हैं, जो अहले मक्का से बहुत ज्यादा ताकतवर कौमें थी। फनक्कबू फिल बिलाद, यहाँ पे नक्कबू का जो लफ्ज़ है ये अहम है, और नून काफ बा इसके मानी होते हैं सुराख करना, सुराख करना। और इसी तरह नक्कबू का जो लफ्ज़ है ये फाड़ने के मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो ये मुहावरा है, कोई ज़मीन में दूर दराज मुल्कों में चले फिरे तो उसको कहा जाता है कि फनक कबू फिल बिलाद, कि उन्होंने दुनिया के मुल्कों को छान मारा, खूब चले, खूब घूमे, यानी इतनी जोरावर कौमें थीं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जा घूमी थीं, दूर दूर तक उनकी फतुहात थी और उनकी ताकत थी। हल में महीस, फिर क्या वो कोई जाए पनाह पा सके। महीस जो है हा या स्वाद इसका मादा है, और इसके मानी हैं जाए पनाह के। तो क्या उनको कोई जाए पनाह मिल सकी, यानी जब अल्लाह के पकड़ने का वक्त आया तो कोई ताकत उनको बचा सकी, या दुनिया में कहीं किसी कंट्री ने किसी कौम ने उनको पनाह दी। इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अल्क़ा समअ वहुवा शहीद। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्ना फी ज़ालिका लज़िक्रा, कि इस तारीख में कौमों के जो जवाल के वाक़यात हैं, इस तारीख में इबरत का सबक है। लज़िक्रा, लज़िक्रा जो है इसके मानी है कि इबरत का सबक है। इसमें जो है वो बड़ी इबरत है। लिमन काना लहू कल्बन, लिमन काना लहू कल्बन, हर उस शख्स के लिए जिसके पास कल्ब हो, दिल हो। क्योंकि अगर किसी के पास महसूस करने वाला दिल होता है तो दिल क्या है, दिल के अंदर ही तो एक जिंदगी होती है ना। और अगर जो है जब दिल में जिंदगी होती है तो वो नसीहत और इबरत हासिल करता है। तो अगर किसी के पास महसूस करने वाला دل ہو، او القسم آ، او یا القسم لگائے کان، القا کے معنی لگانے کے ہیں، جیسے کان لگا کر کوئی بات سننا نا، یا کوئی کان لگا کر جو ہے وہ بات کو سنے، وہوا شہید اور وہ متوجہ ہوتا ہے، یہاں پہ شہید جو ہے اس کے معنی ہیں اور وہ متوجہ ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کا گواہ بننا ہے نا کہ وہ کان لگا کر بات کو سنتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس کھلے کان ہیں اور کوئی توجہ سے بات کو سنتا ہے، حاضر ہوتا ہے نا، شہید ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، کان حاضر ہوتے ہیں تو سن رہے ہوتے ہیں، دل حاضر ہوتا ہے تو توجہ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ نصیحت کو توجہ سے سنتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور جو کچھ درمیان کی چیزیں ہیں، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، ان کو پیدا کیا، فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، چھ دنوں میں. اور یہ بات پہلے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر چکے ہیں، اور یہاں پہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں آسمان زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن جو ہے وہ آرام کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تھکے تو نہیں؟ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کوئی تھکن جو ہے وہ لاحق نہیں ہوئی. لام غین با، اس کے معنی ہے کام یا محنت کی زیادتی کی وجہ سے تھک جانا، کمزور ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پیدا کر کے سب کچھ ہم تھکے تو نہیں، ہمیں اس سے کچھ بھی تھکن جو ہے وہ نہیں ہوئی، تھکن نے ہم کو چھوا تک نہیں. تو جو رب یہ آسمان زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا وہ رب انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ آپ سورت احقاف میں بھی اسی طرح کی آیت جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں. فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے جو یہ باتیں بناتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت، فَسَبِّحْهُ، پھر اس کی تسبیح کرو، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی. یہ جو دو آیتیں ہیں اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کے دین کا کام کیا جاتا ہے یا جب جو ہے وہ دنیا میں مشکلات اور پریشانیاں پیش آتی ہیں تو طاقت کہاں سے حاصل کرنی ہے. تو یہاں پہ پہلا حکم کیا دیا گیا کہ اللہ کی پہلی بات یہ کہی گئی کہ صبر کرو، فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. تو پہلا حکم یہ دیا گیا کہ صبر کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ صبر جو ہے وہ انسان جو ایمان لانے والے ہیں تو صبر جو ہے اس کی بنیادی صفت ہے، کیونکہ صبر کے بغیر جو ہے وہ کوئی مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا. دنیا نہیں مل سکتی تو پھر آخرت کیسے مل جائے گی؟ تو فَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بھی یہ لوگ بناتے ہیں آپ اس پہ صبر کیجئے، یعنی دین کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ صبر کرنا ہے. نمبر دو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو. اب تسبیح کے اوقات بتائے گئے ہیں، اور آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ رب کی حمد اور اس کی تسبیح سے مراد یہاں پہ نماز ہے، کیونکہ جب حمد اور تسبیح کے ساتھ جو ہے وہ اوقات کا ذکر ہو تو مفسرین کہتے ہیں خاص طور پہ وہاں نماز مراد ہوتی ہے. قبلہ طلوع شمسی سے مراد ہے فجر کی نماز، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے مراد ہے فجر کی نماز. وقبل الغروب، اس سے دو نمازیں مراد ہیں، سورج کے غروب ہونے سے پہلے ظہر اور عصر. اس طرح یہ تین فرض نمازیں ہو گئیں. ومن اللیلی، اور رات کے وقت بھی، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، تسبیح بیان کرنی ہے. ومن اللیل، اس سے مراد ہے مغرب اور عشاء کی نماز. فَسَبِّحْهُ، پھر اس کی تسبیح کرو. اور تسبیح کے دو معنی ہیں، مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. ایک تو ہے ذکر بعد الصلاۃ، نماز کے بعد کے اذکار، اور وہ ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، اور دارالایمان نے اس کا کارڈ بھی بنایا ہوا ہے جس میں صبح شام کے اذکار بھی ہیں، और इसी तरह जो फज़कुरूनी किताब है उसमें भी नमाज के बाद के अस्कार भी हैं, और नमाज के बाद के अस्कार आपको आते भी होंगे और वो हमें पढ़ने चाहिए। तो एक राय ये है कि फसबेहु से यहाँ पे मुराद जिक्र बाद सलात है। दूसरी राय ये है कि फ़र्ज के बाद नवाफिल अदा करना, ये भी अल्लाह की हमदो सना की और अल्लाह की हमदो तस्बीह की एक शक्ल है। और वमिन अल्लैल से मुराद यहाँ मगरिब और इशा है, और रात के वक्त यानी मगरिब और इशा के वक्त भी अल्लाह की हमदो सना बयान करनी है। बल्कि लैल के अंदर मुफस्सरीन कहते हैं तहज्जुद भी आ जाती है, मगरिब इशा और फिर तहज्जुद, जो कि नवाफिल में सबसे अफजल नमाज है। व अदबार सुजूद, अदबार दुबुर से है, पीठ पीठ के लिए आता है। व अदबार फिर यहाँ पे इसके मानी है और बाद में, असुजूद सजदों के और नमाजों के बाद भी, यानी सजदा रेजियों से फारिग होने के बाद भी। एक तो है ना ये पांच वक्त की नमाज पढ़ ली और तहज्जुद पढ़ ली, और दूसरी हमें बात क्या पता चली कि नमाजों के बाद अस्कार कर लिए, तीसरी बात क्या पता चली कि हमने नवाफिल पढ़ लिए। तो अब जब ये सारे काम कर लिए तो उनसे फारिग होने के बाद भी अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह करनी है। और इस सिलसिले में बुखारी मुस्लिम की रवायत बड़ी मशहूर है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक मरतबा गरीब महाजरीन ने हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार लोग तो बड़े दर्जे लूट ले गए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? उन्होंने अर्ज किया वो नमाजें पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं और रोजे रखते हैं जैसे हम रखते हैं, मगर वो सदका करते हैं और हम नहीं कर सकते, वो गुलाम आज़ाद करते हैं और हम नहीं कर सकते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊं जिसे अगर तुम करो तो तुम दूसरे लोगों से बाजी ले जाओगे, बजुज उनके जो वही अमल करें जो तुम करोगे। तो वो अमल ये है कि तुम हर नमाज के बाद 33 33 33 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर कहा करो। और एक रवायत में हमें अल्लाह अकबर जो है वो 34 दफ़ा भी मिलता है, 34 दफ़ा। कुछ मुद्दत के बाद उन लोगों ने अर्ज़ किया हमारे मालदार भाइयों ने ये बात भी सुन ली है और वो यही अमल करने लग गए हैं। अब ये फिर उदास हो गए कि वो फिर हमसे आगे बढ़ गए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाही युतीउ मन यशा। और इसी तरह ये जो कलमात है ना, ये सुबहानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर, ये 10 10 भी हमें हदीस से मिलते हैं। और फिर इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर जब पलटते तो आप ये भी कहते थे सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप भी नमाज के बाद के अस्कार जो हैं वो याद करें, तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन अल्लाह ने तौफीक दी तो आपसे सुनते हैं। और आप कोई भी तीन अस्कार, छोटे हो सकते हैं बड़े हो सकते हैं, आप अपने पास होमवर्क के तौर पे लिखें। और एक बात याद रखें कि ये जो अस्कार हैं इनको महज ज़बान से अदा नहीं करना, बल्कि सोचना है कि इन अस्कार के अंदर मैं क्या कह रही हूँ, समझना है अच्छी तरह और फिर उस पर अमल करना है। वस्तमे, इस तमे जो है इसका लफ्ज़, इस लफ्ज़ के मानी है तवज्जो से सुनना। वस्तमे और तवज्जो से सुनो, यौमा युनादिल मुनादि मिन मकानिन करीब, जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही से पुकारेगा। तो अब यहाँ पे जो है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तवज्जो से इस बात को सुनो कि फिर मुनादी करने वाला जो है वो मुराद कौन है, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, जो बजरिया जो है वो नफ़खे सूर मुर्दों को कब्रों से निकलने के लिए उसके पास ही से पुकारेंगे। योमा युनादिल मुनादी से मुराद हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम हैं, और जब वो सूर फूंकेंगे मिन मकानिन करीब, तो जो कब्रों में मुर्दे होंगे वो उनको आवाज़ पहुँचेगी और वो जो है वो उस आवाज़ को सुन लेंगे। यौम यस्मऊन सैहत बिलहक ज़ालिका यौमुल खुरूज, जिस दिन सब लोग आवाज़ हशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे। असैहता, आप इसको पहले ही पढ़ चुकी हैं, स्वाद या हा इसका मादा है, कपड़े या लकड़ी को चीरते फाड़ते वक्त जो आवाज़ आती है उसको कहा जाता है। और जिस दिन यस्माऊना सुनेंगे, असैहता चीखो पुकार, बिलहक की हक के साथ, तो जिस वक्त जो है बिल यकीन वो ये चीख को सुनेंगे, ज़ालिका यौमुल खुरूज, वो ज़मीन से मुर्दों के निकलने का वक्त होगा, तो उस वक्त लोग कब्रों से निकल खड़े होंगे। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैनल मसीर। यहाँ पे तीन बातें अल्लाह ताला ने कही हैं एक आयत में छोटी सी में, कि हम ही जिंदगी देते हैं। इन्ना नहनु नुहयी, अब आप देखें कि हम का सीगा इतने हिस्से में तीन दफा इस्तेमाल किया गया। इन्ना, बेशक हमने, नहनु हम, नुहयी में भी नून हम का है, और हम ही जिंदगी देते हैं, व नुमीतु, और हम ही मौत देते हैं, वह इलैनल मसीर, और हमारी तरफ सबको पलट कर आना है। यौमा तशक्ककुल अर्दु अनहुम सिराआ, और लोग यौमा, जिस दिन, तशक्ककु फट जाएगी, अल अर्दु जमीन, शक शीन काफ काफ सख्त चीज का फटना, जिस दिन जमीन फटेगी, अनहुम तो इससे इनसे, सिराआ सुर्रा होता है तेज, सीन रा आयन, तो झटपट निकलते जाएंगे, तेजी से निकलेंगे, तो जमीन के फटते ही लोग जो हैं वो तेजी से जो है वो मैदाने कयामत की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। तो यसर होता है ना आसानी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लोगों को जमा कर लेना कब्रों से, और वैसे भी जो कब्रों में नहीं है, कहीं भी हैं, और जर्रे हैं, समंदर के अंदर हैं, पहाड़ों में हैं, जानवरों ने खाया हुआ है, राख बनाकर किसी ने उड़ा दिया है, हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, और हमारे लिए इकट्ठा करना बहुत आसान है। नहनु आलमु बिमा यकुलूना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये बातें बना रहे हैं हम खूब जानते हैं। वमा अंता अलैहिम बिजब्बार, और तुम्हारा काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन पर जो हैं जोर करने वाले नहीं हैं, यानी जबरदस्ती नहीं कोई बात मनानी, बस आपका काम था कि इन तक बात पहुंचा दें, और अगर ये बात मानते नहीं हैं तो आप इसकी कतई परवाह ना करें। फजकिर, बस आप नसीहत करें, बिल कुरानी, इस कुरान के जरिए से। मैं ये खाफू, हर उस शख्स को जो डरे, वईद मेरे डरावे से। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुरान से समझाइए हर उस शख्स को जो डरे मेरे डराने से, जो मेरी तंबीह से डरे। तो अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ तसल्ली दी जा रही है कि आपका काम पहुँचाना है बात को, ज़बरदस्ती मनवाना नहीं है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आपकी बस इतनी ज़िम्मेदारी है कि ये नींद के माते जो हैं गफलत की नींद से होश में आ जाएं, और आप कुरान सुनाकर हकीकत इन्हें समझाइए, और अगर नहीं मानते तो आप परवाह ना करें, फिर इनसे मनवा लेना जो है हमारा अपना काम है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह इस आयत को पढ़कर ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अज्अलना मिम्मन यखाफु वईदका व यरजू मऊदका या बारु या रहीम। या अल्लाह, हमें इन लोगों में दाखिल कर जो आपकी वईद अज़ाब से डरते हैं और आपके वादे के उम्मीदवार हैं, ए वादा पूरा करने वाले, या बारू या रहीम, और ए रहमत फरमाने वाले। और हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें ज़बान की हिफाजत करने वाला बना दे। और ये आज का सबक हमें अमल के क्या उसूल देता है कि हम मोहतात हों, कि किरामन का तबीन दाएं बाएं बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो सब कुछ नोट कर रहे हैं। नंबर दो, हम ज़बान की हिफाजत करने वाले बने। नंबर तीन, हम जो है वो सकरातुल मौत से अल्लाह की पनाह में आएं। नंबर चार, हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए, मौत की अल्लाह के पास हाजिरी की तैयारी करनी चाहिए। नंबर पाँच, हमें फजूल चीज़ें जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करनी चाहिए। सूरत अल हुजरात भी आपने पढ़ी थी ना, तो अब क्या करना है, फरागत की बजाय नेकी के कामों में मसरूफ़ रहना है, बेकार बातों से परहेज़ करना है, खामोशी इख्तियार करनी है, नेकियों की हिफाजत करनी है, और फिर इसके साथ उन सिफात से दूर रहना है जो जहन्नुम में ले जाने वाली हैं, और उन सिफात को इख्तियार करना है जो कि जन्नत में ले जाने वाली हैं। और अल्लाह हमें उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले जो कि मुत्तकी बन जाते हैं, नेक बन जाते हैं। तो या रब्बुल इज़्ज़त, आप हमें जन्नतियों में शामिल कर लीजिए। وہ جنت جو آپ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے, جو ان کے قریب لائی جائے گی, اور جس جو بڑی ہی خوبصورت ہے, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی دل میں اس کے بارے میں خیال بھی گزرا, اور نہ جو کسی کان نے جو ہے وہ سنی. اور یا اللہ تو ہمیں اواب اور حفیظ اور منیب متقی جو ہے جو بہترین لوگ ہیں آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.